नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियाँ, देश दुनिया की बड़ी खबरें। केकी के नाम से मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ की मौत के मामले में कोलकाता पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि सिंगर केकी के चेहरे और सिर पर चोट के निशान दिखे थे, जिसके बाद पुलिस ने न्यू मार्केट थाने में मामला दर्ज किया है। गायक केके मंगलवार 31 मई को कोलकाता में एक शो से लौटने के बाद न्यू मार्केट थाना क्षेत्र के ग्रैंड होटल में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं। सिंगर केके की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए बुधवार को कोलकाता के SSKM अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही पुलिस ग्रैंड होटल में CCTV फुटेज की जांच करेगी और होटल के कर्मचारियों और कार्यक्रम के आयोजकों से पूछताछ करेगी। कोलकाता के संयुक्त पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा को द ओबराय ग्रैंड में पहुँचते देखा गया, जहाँ गायक केके ठहरे हुए थे। मंगलवार को संगीत कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ श्रोताओं के अनुसार इंडोर नजरुल मंच ऑडिटोरियम में बहुत भीड़ थी और एयर कंडीशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। पसीने से लथपथ केके मंच पर गर्मी महसूस कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने आयोजकों से उन पर रोशनी कम करने के लिए कहा था। बताया जाता है कि मंच के आसपास भीड़ होने की शिकायत उन्होंने आयोजकों से भी की थी। आयकर विभाग कथित तौर पर टैक्स चोरी को लेकर दूतावास समूह यानी कि एम्बेसी ग्रुप्स में तलाशी अभियान चला रहा है। बताया जा रहा है कि आईटी विभाग मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में वी वर्क परिसर की तलाशी ले रहा है। ये भी पता चला है कि दूतावास समूह से जुड़े बेंगलुरु और गुरुग्राम परिसरों में तलाशी चल रही है। BKC मुंबई में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के परिसर में तलाशी अभियान चला रहा है। मीडिया को जारी एक बयान में दूतावास समूह ने इसे नियमित आयकर पूछताछ कहा है। बयान में कहा गया कि ये नियमित आयकर पूछताछ है। दूतावास समूह ने हमेशा काम किया है और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना जारी रखेगा। हमने संबंधित अधिकारियों को अपना पूर्ण अनुपालन बढ़ा दिया है। हम अपने हितधारकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि व्यापार हमेशा की तरह जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्ख टिप्पणियां की गईं, तो कई बार दोनों पक्षों के नेताओं ने शायरियों के माध्यम से कड़वाहट कम करने की कोशिश की। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर एक टिप्पणी की थी, जिसका जवाब CM योगी आदित्यनाथ ने शेर के माध्यम से दिया। दरअसल केशव मौर्य बजट पर भाषण दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने विपक्ष और सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि सपा सरकार में सड़क किसने बनवाई, एक्सप्रेसवे किसने बनवाया। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सैफई की जमीन बेचकर सब कुछ बनवा दिया। इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने खड़े होकर कहा था कि तुम अपने घर के पिताजी से पैसा लेते हो सड़क बनवाने के लिए। इसी क्रम में CM योगी विधानसभा में बजट पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, इनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गईं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि आपके इत्र वाले मित्र बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र के लिए काम हमारी ही सरकार ने किया है। कन्नौज में इत्र का कारोबार 800 करोड़ का हो रहा है। म्यांमार की सरकार और उसके विरोधियों ने देश के सबसे बड़े शहर यांगून के मध्य भाग में मंगलवार को हुए एक बम विस्फोट के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य लोग घायल हो गए। सरकारी समाचार पत्र द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार की खबर में एक विस्फोट का संबंध उस सशस्त्र आंदोलन से जोड़ा गया, जो लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची की निर्वासित सरकार को सेना द्वारा पिछले साल अपदस्थ किए जाने का विरोधी है। रिपोर्ट में इस विस्फोट के लिए पीपल्स डिफेंस फोर्सेस PDF को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। PDF की कमान काफी हद तक स्वयंभू नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG के हाथ में है। NUG के एक प्रवक्ता ने इस विस्फोट के लिए सैन्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा आजम खान के जेल से आने के बाद पहली बार बुधवार 1 जून 2022 को पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। फिलहाल दोनों के बीच मुलाकात 40 मिनट से अधिक तक चली। दरअसल खान 29 मई 2022 से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि रामपुर से आजम खान की पत्नी लोकसभा का चुनाव सपा की टिकट पर लड़ेंगी या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि भले ही सियासी मजबूरी रही हो, लेकिन दोनों नेता के बीच मुलाकात हो ही गई। इस मुलाकात को कराने में अहम रोल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का माना जा रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।